नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM। आबू की आवाज सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन रोशनी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सभी का बहुत बहुत फिर से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम बहुत सारी चीजें एक साथ करने की कोशिश करते हैं और कभी कभी हम उस लक्ष्य को हासिल भी कर लेते हैं और कभी कभी नहीं भी कर पाते हैं। बहुत सारे परिस्थितियां भी हैं और कई बार हम बिना जाने कोई चीजें ऐसे ट्राई करते हैं, फिर लोग हमें कहते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन वास्तविक इसका अर्थ क्या है, इसके बारे में आज हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यूथ की आवाज भी सुनेंगे।
नमस्कार दोस्तों, आज मुहावरों की इस कड़ी में हमारा जो नया मुहावरा है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे पहले दोस्त के साथ। हेलो।
हाय,
आपका नाम?
प्रियंका।
अच्छा, तो प्रियंका हमें बताइए कि आपके लिए नाच न जाने आंगन टेढ़ा का क्या मतलब?
मेरे लिए नाच न जाने आंगन टेढ़े का मतलब यह है कि अपन अपनी कमजोरी को ना समझे और अपनी जो काम की इच्छा को ना समझे और दूसरों पे उसको थोपे, यह है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मतलब जो काम हमें नहीं आता है उसको हमें नहीं करना, लेकिन फिर भी दूसरों पे गलतियां थोपना। जैसे कि इसके लिए हमें बचपन में कहानी सुनाई जाती थी कि एक लोमड़ी थी, वो बहुत दूर कहीं जा रही थी। बीच में उसको जब भूख लगी तो उसे अंगूर के गुच्छे दिखे। वह अंगूर के गुच्छे बहुत ऊपर थे, लेकिन वह उसे तोड़ने के लिए, उसे खाने के लिए बहुत बार उसने प्रयास किया। जब वह प्रयास में असफल रही तो उसने यह कहा कि अंगूर तो बहुत ही खट्टे हैं और ये कच्चे अंगूर मैं क्यों खाऊं। मतलब उसे यह काम नहीं करना था और वो उसमें असफल रही तो उसने उस अंगूरों पर ही दोष डाल दिया।
बहुत ही बढ़िया, इतना मजा आया इस कहानी को सुन के। हालांकि ये कहानी हमारे बचपन से रिलेटेड जरूर है और हम इसको शुरुआत से सुनते आए हैं, तो थैंक यू प्रियंका ये बताने के लिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा का आपकी जिंदगी में क्या महत्व रखता है।
हेलो, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 FM और इस वक्त हम एक छात्र के साथ हैं जी। आपका नाम?
शैलेंद्र सिंह
जी। तो शैलेंद्र, आज का जो मुहावरा है वो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये मुहावरा सुनकर आपको कैसा लग रहा है?
ये मुहावरा सुनकर मेरे को कहीं ना कहीं बुजदिली और बहादुरी को छुपाने की बात मेरे सामने आती है कि अगर कोई, जैसे कोई बहादुर व्यक्ति होता है वो अपनी हमेशा कमियों से कुछ सीखता है, ना कि किसी और के, मतलब अपने हार जाने पे किसी और का, मतलब वो निकालना, हार का कारण बताना, कोई और हार का कारण ना, कि कोई बहादुर व्यक्ति पहले अपने कमियों को देखता है फिर अपने वो हार स्वीकार करता है। कुछ लोग होते हैं जो कि हार जाते हैं पर वो उसका हार का कारण किसी और व्यक्ति को बताते हैं कि मैं इस वजह से हार गया, आज मेरा दिन खराब था, आज मेरी किस्मत खराब थी, ना कि उनकी मेहनत व उनकी कमियों को देखते हैं। तो हमें पहले अपनी मेहनत और अपनी कमियों को ढूंढना चाहिए, ना कि अपनी किस्मत के साथ।
तो जो ये मुहावरा, जिस तरह आपने पूरा इसका मतलब बताया, तो आपके हिसाब से आज के संसार में लोग इसको कितना इस्तेमाल करते हैं और क्या सच में ऐसा देखने को मिलता है?
जी हाँ, ऐसा कुछ कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि आप, मैं किसी पार्टी विशेष को नहीं लेके, कई बार चुनाव के मुद्दे में आपको देखने को मिला होगा कि हार के बाद कुछ लोग बोल देते कि EVM मशीन खराब है, पर उनका वो कभी काम नहीं देखते कि उन्होंने क्या विकास कराया है, देश में क्या काम किए, उनकी विचारधारा क्या है, उनके देश के प्रति कितना प्रेम है, देशभक्ति कितनी है। बल्कि वो सीधे सीधे बोल देते हार के बाद के हमारे तो EVM मशीन खराब थी इसलिए हमारी हार हो गई और सामने वाली पार्टी की जीत हो गई। तो ऐसे मुद्दे कई बार सामने आते हैं जो कि एक इंसान की ये मुहावरा अर्थ को सच में सही साबित करते।
तो आपके लाइफ में ऐसा कभी कुछ हुआ कॉलेज में या कहीं ऐसा शेयर करना चाहेंगे?
नहीं, कई बार मेरे साथ तो नहीं होता है, पर जैसे मैं किसी और को देखता हूँ कॉलेज या कहीं पे भी, तो जैसे कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम भी होते हैं तो कहते हैं कि अरे आज तो यार मैं कुछ, मेरा दिन खराब था या सर ने आज मुझे ये बताया नहीं पहले से, या फिर मेरे को टॉपिक आज बहुत लेट मिला, या मुझे कुछ भी, तो वो हार का कारण कुछ टॉपिक या सर या कुछ अपनी रोजाना की मुद्दों को लेकर वो बताते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ट्विंकल।
हेलो वेदांत।
तो आपको आज का मुहावरा मालूम है?
हाँ मालूम है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।
जी, तो इस मुहावरे से आप क्या समझते हो?
देखो, मुझे तो यही समझ में आता है कि जैसे कोई इंसान होते हैं जो खूब फेंकते हैं, जैसे मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मुझे ये काम आता है, तो वो काम जब असल में करने का होता है, वो जब टाइम आ जाता है करने का, तो वो एकदम मतलब लूज हो जाते हैं कि नहीं मेरे को टांग में चोट लग गई। जैसे कोई रेस में भाग रहा है और अगर बोलता है कि आई कैन कम फर्स्ट इन रेस, और अगर वो हार जाता है तो बोलते हैं अरे मेरे टांग में चोट लगी थी, तो मेरा आज तबीयत ठीक नहीं था, आई वॉज हैविंग हेडेक, कुछ ना कुछ बहाना बना के वो टाल देता है। तो यही है कि जिसको डांस करना आता नहीं है तो वो आंगन को टेढ़ा बोल देता है, स्टेज को टेढ़ा बोल देता है।
ऐसे टाइप के लोग क्या सच में अभी के समय में ऐसे देखने को मिलते हैं?
बिल्कुल देखने को मिलते हैं। मेरे साथ ही बहुत बार ऐसा हो चुका है, मतलब कोई काम खूब अच्छे से लोग बोलते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरी जितनी फ्रेंड्स हैं कुछ ऐसी हैं जो मतलब बड़े बड़े दावे करती हैं कि हाँ कर सकती हूँ, और जब वो रियल में करने का आता है, जब वो पास हो जाता है वो चीज़, उसके बाद उनके 10 बहाने पहले से ही तैयार हो जाते हैं कि हाँ मतलब ये प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी। तैयारी पूरी करके रखते हैं कि चलो अगर डांस करना नहीं आ रहा है तो आंगन को टेढ़ा बोल देंगे।
ऐसा देखने को मिलता है, तो ऐसे लोगों से आपको क्या लगता है दीदी, अगर कोई हमारे सामने फेंक रहा है तो हमें क्या करना चाहिए?
हमें उसको और बोलना चाहिए यस यू कैन डू इट, हाँ कर सकते हो आप बिल्कुल, ताकि अगर वो बहाने तैयार भी रखे और उसको मोटिवेट हम कर दें तो कुछ हद तक वो काम कर ले। तो हमको उसको और बढ़ावा देना चाहिए, बजाय उसको कि हम बोले कि नहीं तू फेंक मार रहा है या आप नहीं कर सकते हो, ये बोलने से अच्छा है उसको मोटिवेट करें।
दीदी जैसे ऐसा भी कहा जाता है कोई फेंक मारता है, अपने कहेंगे ना कि तुम फेंक मार रहे हो तो फिर झगड़ा भी होता है, इससे अच्छा हम मोटिवेट करना
ये ज्यादा सही रहता है।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी।
थैंक यू विदन।
इतने अच्छे अच्छे दोस्तों की बात सुनने के बाद हमारे साथ जुड़ी हैं एक और दोस्त जो अपने विचार इस मुहावरे के लिए रखना चाहती है, तो चलिए आइए उनसे भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उनके लिए क्या महत्व रखता है। आपका नाम?
मनीषा।
अच्छा मनीषा जी, आप हमें बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या है आपके लिए?
नाच ना जाने आंगन टेढ़े से मैं ये समझती हूँ कि जब हम किसी मैथ्स के सवाल को सॉल्व करते हैं और उस सवाल को हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हम यही कहते हैं कि यार सवाल बेकार है, सवाल ऐसा है वैसा है, इसलिए हम नहीं कर पाए। इससे अच्छा तो ये है कि उस प्रश्न को हम सॉल्व करने की कोशिश करें, वो उसे पूरा करें।
बिल्कुल 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 सही कहा, क्योंकि कई बार मैं भी ऐसा बहाना लगाती थी कि मैथ्स का क्वेश्चन अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम खुद तो कोशिश करते नहीं है। बहुत अच्छा बताया मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
यूथ की आवाज के बाद आइए फिर से आप सभी का स्वागत है, और आज हमारे बीच जो हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सचिन जी हैं, माउंट आबू ग्लोबल हॉस्पिटल में आप सेवाएं दे रहे हैं, MBBS MD के साथ साथ बहुत सारे और भी डिग्रीज आपके पास है, लेकिन कह सकते हैं कि टीन एजर से या बचपन से आपने सत्य की खोज की और साथ ही साथ आपकी मन में भी एक इच्छा जागृत हुई कि कैसे आप सत्य तक पहुंचेंगे, और पढ़ाई के साथ साथ आपने बहुत सारे अन्य शास्त्रों के भी अध्ययन किया है। इसे बहुमुखी प्रतिभाओं की धनी और यूथ की इंस्पिरेशन, यूथ आइकॉन हमारे साथ हैं, आइए उनसे आज हम जानेंगे जीवन रोशनी कार्यक्रम के माध्यम से नाच न जाने आंगन टेढ़ा इस मुहावरे के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत ही मजा आएगा ये कार्यक्रम सुनते हुए, तो आप हमें फोन कर सकते हैं 9414151415 इस नंबर पर। सर बहुत सारे यूथ ने अपने अपने राय दी यहाँ पर, बेसिकली हमारे भारतवर्ष में जो मुहावरे यूज होते हैं आपको क्या लगता है कि क्यों ये मुहावरे का यूज भारत में किया जाता है? क्या हम सीधी बातचीत नहीं कर पाते जो हमें दूसरी तरीके से या टेढ़े तरीके से बात करने की आवश्यकता पड़ी?
जी सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। रही बात मुहावरों की, तो भाषा जो है भाषा मनुष्यता का श्रृंगार है, और इस भाषा को यदि हमें बहुत सुंदर बनाना है तो हम ऐसा कहेंगे कि मुहावरे एक ऐसी चीज है, लोकोक्तियां कहो मुहावरे कहो, जो कि सदियों से चली आ रही है, और भाषा का श्रृंगार करने वाले ये मुहावरे हैं। कोई भी भाषा, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश या विश्व की कोई भी भाषा अगर ले लो तो उसमें कुछ ऐसे वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे वृद्ध वाक्य कहो, कुछ ऐसे मुहावरे कहो, कि वो जब प्रयोग किए जाते हैं तो उस भाषा में जैसे चार चांद लग जाते हैं। आप किसी भी कवि को पढ़ो, किसी भी लेखक को पढ़ो, आप देखोगे कि उसकी भाषा में एक जादू होता है, एक अमृत सा झलकता है उस भाषा में, जब उस भाषा में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया जाता है। और भारत तो ऐसा देश है कि जिसमें बहुभाषाएं हैं, और भारत में अगर हम देखें तो इतनी सारी भाषाएं और एक एक भाषा में इतने सारे मुहावरे, और कुछ कुछ मुहावरे तो ऐसे मुहावरे हैं कि जो केवल उसी गांव के लोग या उसी प्रांत के लोग ही जानते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि मुहावरों की वजह से भाषा में एक दिव्यता, एक सौंदर्य आ जाता है और इसी वजह से भाषा और इन मुहावरों का इतना अधिक महत्व है, भारत में ही नहीं सारे विश्व में।
सर, जैसे आज हम नाच न जाने आंगन टेढ़ा इस मुहावरे के बारे में जान रहे हैं, वो कहते हैं कि अंगूर अगर नहीं मिलता है तो खट्टा ही लगता है, लेकिन अगर हम युवाओं की नजर से देखें या हम अपने परिस्थिति के बारे में बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हमें परीक्षाओं में विफलता हासिल होता है और कई बार मुश्किलें भी आती हैं और उसे हम सामना नहीं कर पाते हैं, तो लोग हमें ताना मारते हैं और ये मुहावरे का यूज करते हैं, तब हमारी स्थिति भी डाउन हो जाती है। तो कैसे एक्सेप्ट करें, क्या ये जब ताना हमें मारते हैं तो कैसे उस सिचुएशन में अपने आप को रखें?
सबसे पहले तो हमें ये जो मुहावरा है इसका वास्तविक अर्थ क्या है वो समझना चाहिए। मुहावरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जैसे कोई कन्या है, उसे नाचने के लिए कहा गया तो वो जब नाचने लगती है तो नाच नहीं पाती और फिर कहती है कि आंगन ठीक नहीं है इसलिए मैं नाच नहीं पा रही हूँ। तो कहने का भाव ये है, ये मुहावरा का वास्तविक अर्थ है कि जब व्यक्ति कोई कार्य करना नहीं चाहता और बहुत सारे बहाने देता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, या फिर वो कार्य नहीं करना चाहता और आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोग उनको इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है तब इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, बहुत बहुत समय पहले अमेरिका का लेखक था, हुबार्ड नाम के एक लेखक थे, तो उन्होंने एक ऐसे लिखा था जो ऐसे इतना प्रसिद्ध हुआ कि जिस पर दो मोशन पिक्चर्स भी बनी गई और बहुत सारे आईटी कंपनीज में ये ऐसे कहो या ये निबंध कहो और ये जो कहानी कहो ये सुनाई जाती है। तो क्या है ये कहानी? तो इस कहानी में ऐसा दिखाया है कि अमेरिका और स्पेनिश वॉर चल रहा है, बहुत समय पहले जो हुआ था। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट था उसको एक लेटर पहुंचाना था जो उस इंसर्जेंट्स मिलिट्री का जो एक मुख्य लीडर था उस तक, जिसका नाम था गार्सिया। तो गार्सिया को वो लेटर पहुंचाना था, पर वो गार्सिया कहाँ है, कैसे उस तक पहुंचे, ये किसी को नहीं पता था। तो अचानक से एक सिपाही का नाम सजेस्ट किया जाता है और वो कहता है मैं जाऊंगा उस गार्सिया तक। वो गार्सिया कहाँ है किसी को नहीं पता, खाली इतना पता है कुबा का जो टापू है वहां कहीं है वो, और वहां जाना बहुत मुश्किल है। पर ये जो व्यक्ति होता है सिपाही जिसका नाम होता है रोवन, वो लेटर लेता है प्रेसिडेंट से, वो कहता है मैं जाऊंगा। वो लेटर अपनी छाती से लगाता है, स्ट्रैप करता है, अपने आप को कवर करता है, एक जहाज उसको एक तालाब तक छोड़ देती है और फिर बाद में वो उस जंगल में चला जाता है कुबा के, और कैसे भी करके उस गार्सिया नाम का जो व्यक्ति है लीडर उसको ढूंढता है, उसको वो लेटर देता है और वापस आ जाता। तो ये जो लेखक है हुबार्ड, उन्होंने लिखा कि वो जो रोवन था उसने ये नहीं पूछा कि वो गार्सिया कहाँ है, मैं कैसे जाऊंगा, कोई बहाना नहीं दिया, सीधा लेटर लिया और अपनी विल पावर से बस मुझे करना है, ये मेरे देश का कार्य है, और बस सीधा चला गया। तो ये कहानी बहुत छोटी है परंतु आईटी कंपनीज में सुनाई जाती है, इसलिए कि एम्प्लॉयज जो होते हैं हमेशा कोई ना कोई बहाना देते हैं और बहाने की बहुत बड़ी लिस्ट है अगर हम लिस्ट निकाले तो। पर जैसे रोवन ने दिखाया इस कहानी में कि कैसे उसने किसी भी तरह का कोई बहाना नहीं दिया, उसको बस एक ही था कि मुझे अपने देश के लिए करना है, मतलब करना है, और वो निकल पड़ा और उसने वो लेटर पहुंचा कर ही वापस आया, अपने जान की परवाह नहीं की, कोई परवाह नहीं की। तो कहने का भाव कि मनुष्य के स्वभाव में कहीं ना कहीं ये बात इतनी गहराई तक चली गई है कि हम कोई ना कोई बहाने ढूंढते हैं, इसको कहते हैं बहानेबाजी। अब एक सूक्ष्म प्रश्न ये भी है कि ये जो बहाने हैं ये व्यक्ति क्यों बनाता है ये बहाने? तो गहराई से सोचो तो सबसे पहले तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये बहाने क्यों बनते हैं, ताकि हम इससे छुटकारा पा सके, नहीं तो पूरा जीवन हमारा इसी में चला जाएगा कि भाई ये क्यों नहीं किया तो ये कारण था, वो क्यों नहीं किया तो ये कारण था, इसी तरह के हम बहाने बनाते जाएंगे, एक्सक्यूजेस करते जाएंगे। एक और बात मुझे याद आ रही है, एक बार मेडिकल कॉलेज के चार विद्यार्थी कहीं पार्टी में चले जाते हैं और वहां उनको लेट हो जाता है और वो ये चारों भूल ही जाते हैं कि दूसरे दिन सुबह उनकी एग्जाम है, और जब पार्टी पूरी हो जाती है और रात को 12 बज जाते हैं तब उनको याद आता है कि अरे हमारी तो कल एग्जाम है, हम क्या करें, हम क्या उत्तर देंगे। तो वो एक युक्ति रचते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई तो की नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि हमें कम से कम 2-3 दिन मिल जाए पढ़ने के लिए तो हम अच्छी पढ़ाई करेंगे और फिर एग्जाम देंगे। तो वो एक ऐसी युक्ति रचते हैं कि अपने पूरे कपड़ों पे ग्रीस लगा लेते हैं काला काला, और प्रिंसिपल के डीन के ऑफिस में पहुंचते और कहते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए कहीं गए थे, हमारी कार खराब हो गई और उसको ठीक करते करते हमारा ये हाल हो गया और हमको पढ़ाई करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। प्लीज आप एक काम कीजिए कि हमें एक दो दिन और दे दीजिए, क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी ना उसमें पंचर हो गया और वो निकालते निकालते इतना टाइम हो गया कि हम कुछ कर ही नहीं पाए, इसलिए हमको लेट हो गया और इसलिए हम अभी एग्जाम तो चालू हो चुकी है, एक घंटा बीत गया है, हम कैसे देंगे, हमको प्लीज दो दिन दे दीजिए चारों को। तो जो डीन होते हैं बड़े गंभीर व्यक्तित्व, वो कहते ठीक है चलो ओके। तो दो दिन के बाद वो चारों आ जाते हैं, दो दिन वो बहुत जमकर पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करके चारों पहुंच जाते हैं। तो डीन कहते हैं हाँ एग्जाम तो मैं तुम्हारी लूंगा, पर एक ही शर्त है कि चारों को चार अलग अलग कमरों में बैठना पड़ेगा। तो कहते हैं हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, क्योंकि अभी तो उनकी पूरी पढ़ाई हो गई है, दो दिन पूरा अच्छे से उन्होंने पढ़ लिया है। और जब उनके सामने पेपर आता है तो पेपर में दो ही प्रश्न होते हैं, पहला प्रश्न होता है आपका नाम क्या है, जिसमें होते हैं 2 मार्क्स, दूसरा प्रश्न होता है जिसके होते 98% मार्क्स, दूसरा प्रश्न होता है विच टायर इज पंक्चर्ड, गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ, एक टिक मार्क करो, आगे का दाएं, आगे का बाया, पीछे का दाया, पीछे का बाया, चार ऑप्शन से एक टिक करो। और चारों को चार कमरों में बिठा दिया है, अलग अलग कमरों में
जी।
तो फंस गए तो चारों के चारों। उन्होंने बहाना तो बहुत अच्छा बनाया था, परंतु हर बार हमारा बहाना चलेगा ये जरूरी नहीं है। आप किसी किसी को कभी कभी मूर्ख बना सकते हो, आप सबको कभी कभी मूर्ख बना सकते हो, पर आप सबको हर समय मूर्ख नहीं बना सकते। तो हम चाहे कितना भी अच्छा बहाना ढूंढ ले, एक न एक दिन वो बहाना सबके सामने आ ही जाएगा। तो हम बात कर रहे थे ये बहानों के कारण क्या है, तो चिंतन करके ये पता चलता है बहानों के कम से कम 7-8 कारण है, मुख्य कारण अगर देखे जाए। सबसे पहला कारण है बहानों का असमर्थता, इनेबिलिटी। जब आप में कोई स्किल नहीं है, आप कोई चीज नहीं जानते हैं और आपको वो चीज करने को कहा जाए तो आप कोई ना कोई बहाना बनाएंगे। तो सबसे पहला कारण है असमर्थता। दूसरा कारण है समय। इसमें दो बात है, एक तो वो बात है कि जब हमको कोई कहे कि ये काम करना है, हम कहेंगे नहीं हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम कोई ना कोई बहाना बना देंगे, या तो हम कहेंगे कि हम बाद में कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। एक तो समय एक कारण है। तीसरा कारण है बोर्डम, बोरियत। हमें वो कार्य करने में बहुत बोरियत लगती है तो हम कोई ना कोई बहाना बनाएंगे कि भाई मुझे ये करना नहीं है। ये एक तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है हमारे मन में ही कोई सूक्ष्म बंधन है जिसकी वजह से हम वो कार्य करना ही नहीं चाहते। और जब हमें करना नहीं है, मन में ही कोई ना कोई एक संकल्प या कोई संस्कारों की गांठ है सूक्ष्म जो हमें रोकती है वो करने से। ऐसा एक पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्रिएट हो गया है कि हम वो करना ही नहीं चाहते, चाहे हमें कोई भी कितना भी कहे कि भाई तुम ये करो वो करो, पर हम उसको नहीं करना चाहते। तो एक सूक्ष्म कारण है, मन ही का कोई एक सूक्ष्म बंधन है। अगला कारण है बहानों का कि कोई ना कोई हमारी मजबूरी है। शायद हमें कोई कहता है कि आप यहाँ ये करिए, पर हमारी कोई ऐसी सूक्ष्म मजबूरी है कि जो हम बता भी नहीं सकते उनको, इसलिए हम कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। अगला कारण है जिम्मेदारियां। हमारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इतनी मल्टीटास्किंग चालू है कि हम उन कार्यों में इस कार्य के लिए समय नहीं है हमारे पास, तो ये भी एक कारण है। फिर कुछ लोग होते हैं जो अपने शरीर का कारण देते हैं, स्वास्थ्य का कारण, कहते हैं हमारा शरीर साथ नहीं देता है, हमसे ये नहीं होता है, हम नहीं कर सकते ये क्योंकि शरीर की क्षमता कम हो रही है, ये भी एक कारण है। एक कारण है बौद्धिक कारण। कई लोगों में देखा गया हीन भावनाएं होती है, वो समझते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हम बहुत मंद बुद्धि है, ये तो उन लोगों का कार्य है जो बहुत बुद्धिमान है, हम इतने बुद्धिमान नहीं है, हमसे ये काम नहीं होगा, तो बौद्धिक कारण देते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं जो अध्यात्म में थोड़े आगे बढ़ गए हैं, पर वो भी कभी कभी बहाना देते हैं, और उनके पास बहाना देने के लिए कारण होता है कि भाई भगवान ही नहीं चाहता, ये भगवान की इच्छा है, भगवान नहीं चाहता है कि मैं ये कार्य करूं। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नसीब को सामने लाते हैं, किस्मत को सामने लाते हैं, कहते हैं कि ये किस्मत ही नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं था, हम क्या करें, तो किस्मत को सामने लाते हैं। कुछ कारण है बहानों के कि जो हम कहते हैं कि परिस्थिति अनुकूल नहीं है, ये परिस्थिति एक बार ठीक हो जाए ना फिर मैं सब करूंगा, अब परिस्थितियां ठीक नहीं है, ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे कोई बीमार व्यक्ति है उसको कहो कि भाई डॉक्टर के पास चलो, तो वो कहते हैं नहीं मैं कैसे जाऊंगा, मैं कितना कमजोर हूं, पहले मुझे ठीक तो होने दो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो ये तो ऐसा ही हो गया ना, तो परिस्थितियां ठीक हो जाने दो, फिर मैं अपने आप को ठीक करूंगा। कुछ कारण होते हैं साधनों के, कहते हैं कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास साधन जब होंगे ना तब हम करेंगे, तो साधनों के कारण देते। कुछ लोग होते हैं वो व्यक्तियों को दोषी ठहराते हैं, ये जो लोग हैं ना ये अच्छे लोग नहीं है, ये जो लोग हैं ना इनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये जब हट जाएंगे ना यहाँ से तो फिर हम ठीक करेंगे। कई लोग होते हैं हमारा डिपार्टमेंट ही ठीक नहीं है, हमारा डिपार्टमेंट चेंज करके दो फिर देखना हम क्या क्या करके दिखाएंगे, तो ये डिपार्टमेंट ठीक नहीं है, साधन हमारे पास नहीं है। कई कहते हैं हमारे पास हैंड्स ही नहीं है इसलिए हम नहीं कर पाते, कई कहते हैं हम देखेंगे आगे करेंगे, अभी नहीं कर सकते बाद में करेंगे, तो टाल मटोल करते हैं। तो आपने देखा कि व्यक्ति जब भी कोई कार्य के लिए नहीं कहता है
जी।
तो ये इतनी सारी चीजें उसके पीछे काम कर रही है। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार वो गलत ही है, हो सकता है कभी कभी ये भी हो सकता है कि वास्तव में आंगन टेढ़ा है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वास्तव में जमीन ओबड़ खाबड़ है, इसके लिए नाच नहीं कर सारे, परंतु फिर उपाय क्या है? तो क्या हम सारे जीवन भर दूसरों को दोषी ठहराते रहे? क्या हम सारे जीवन भर परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहे? नहीं। यदि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा, और मैं अपने जीवन में अपने ही आधार से आगे बढ़ू, मैं अपना परिवर्तन खुद जब करूंगा तो ही मैं आगे बढ़ सकता हूँ। दूसरा मेरी कितनी भी चाहे मदद करे, कितना भी भाग्य अनुकूल हो जाए, परंतु यदि अंदर से वो अंतस्फूर्णा नहीं है, जब तक सेल्फ इंस्पिरेशन नहीं है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये तो कुछ कारण थे जो हमने बहानों के आपको बताए।
यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के दौरान अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें 9414154154 पर जरूर भेज सकते हैं। तो आइए सुनते हैं यूथ से जुड़ी हुई ये गाना। वेलकम बैक वंस अगेन, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम जीवन रोशनी, और आज हम बात कर रहे हैं इस एक मुहावरे को लेकर के। सर जैसे आपने कारण बताया और निवारण जरूर हम जानना चाहेंगे आपसे, आपने कहा कि वास्तविक अगर आंगन टेढ़ा है तो हम कैसे डांस कर पाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस ऐसा करना चाहिए कि आप कहीं पे भी हो आप अच्छे से डांस कर सको, उसके लिए क्या करेंगे?
जी बहुत ही सटीक प्रश्न है कि अब ये तो हमने जान लिया कि कारण बहुत सारे हैं, कुछ कारण तो हमने गिनाए, कुछ ऐसे भी कारण हो सकते हैं जो व्यक्तिगत हो किसी व्यक्ति के, और कुछ और भी हो सकते हैं। तो चाहे कारण कुछ भी हो, परंतु एक बात समझ लेनी बहुत जरूरी है कि कहीं न कहीं हमारे मन में ही इच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। आप इस संसार के जितने महान लोग हैं उनके अगर जीवनी को स्टडी करो, अध्ययन करो, तो ये पता चलेगा कि ये सारे महान लोग, सभी के जीवन में इतनी परिस्थितियां थी, इतनी बाधाएं थी, इतनी मुश्किलें थी, परंतु इन सभी आजमाइशों को उन्होंने पार किया और बहुत सफलता से तेजी से आगे बढ़ गए। दोष नहीं देते बैठे कि इनकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से, नहीं। तो जब हम निवारण की बात करते हैं तो मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग याद आ रहा है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जो कि आज विश्व भर में फैला हुआ है, ये जो संस्था है, इस संस्था के जो प्रमुख वक्ता थे भ्राता जगदीश भाई जी, उनके जीवन में एक बहुत सुंदर प्रसंग है। आप सभी जानते होंगे कि इस संस्था के जो संस्थापक थे आदिदेव प्रजापिता ब्रह्मा, वो जब साकार में थे और जब ये संस्था बहुत ही अपने छोटे स्तर पर कार्य कर रही थी, उस समय मैं कहूंगा 1950s में एक बार की बात है, जो कि ब्रह्मा जो थे, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा, तो उन्होंने एक बार कुछ भाई यहाँ पर मधुबन में अर्थात पांडव भवन माउंट आबू में आए हुए थे, तो वहां पर उन्होंने एक काम सभी को दिया। जो सामने भाई बहने थे उसमें से चार मुख्य भाई थे और एक जगदीश भाई जी भी थे, तो वो सब अच्छे अच्छे पदों पर थे, पढ़े लिखे थे। तो ब्रह्मा बाबा ने उनको एक काम दिया कि आपको एक लेटर लिखना है प्रेसिडेंट को, हिंदी में और इंग्लिश में, जिसमें आपको इस संस्था का परिचय उनको देना है। तो ये लगभग रात का समय होगा और बाबा ने कहा कि आप ये काम करके मुझे कल सुबह दिखा था। तो सब लोग अपने कमरे में गए और जैसे ही कमरे में गए लाइट चली गई। तो जब लाइट चली गई तो सबने सोचा बाबा को भी तो पता है लाइट गई थी तो हम कैसे लिखेंगे, हम तो लिख नहीं सकते, तो इसलिए हम ये काम कल करेंगे। तो जगदीश भाई जी जो थे उन्होंने सोचा नहीं कि बाबा ने मुझे पहली बार कोई काम दिया हुआ है, मैं इसको करके ही रहूंगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो स्ट्रीट लाइट थी वहां गए और वहां बैठकर वो सारा काम किया और कितनी बार उसको लिखा, फिर उसको फेर किया, प्रूफ रीडिंग किया, हिंदी में लिखा, फिर इंग्लिश में लिखा, और ये करते करते उनको सुबह के 4 बज गए। बस उनके मन में एक ही संकल्प था कि बाबा ने मुझे कहा है और मुझे ये कार्य करना ही है। बाकी सारे जो थे उन्होंने ये सोचकर कि लाइट चली गई हम कैसा करेंगे, सो गए। और जब वो सुबह मेडिटेशन के लिए उठे और सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे तब जगदीश भाई जी ऊपर जा रहे थे, तब सुबह के 4 बज गए थे, मतलब वो 4 बजे तक वो वहां बैठकर लिख रहे थे। और दूसरे दिन जैसे आध्यात्मिक प्रवचन हुआ, उसके बाद में सब लोगों को लगा कि अब बाबा पूछेंगे क्या हुआ, तो बाबा ने पूछा ही नहीं, तो सब लोग खुश हो गए। तो जगदीश भाई भी थे वो चुप रहे। फिर बाबा सबको पहाड़ी पर लेके गए, थोड़ा घुमाए, जो भी यज्ञवत्स थे उस समय, तब भी बाबा ने नहीं पूछा, तो सब लोगों को लगा कि बाबा भूल गए, वो जो 4 भाई थे तो वो तो खुश हो गए अंदर ही अंदर। और सब लौट के जब आए तब फिर बाबा ने पूछा कि क्या हुआ मैंने जो काम दिया था। तो जगदीश भाई को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि मैंने तो किया है, पर शर्म वास्तव में उनको आनी चाहिए थी, पर इनको थोड़ा अजीब सा लगा तो वो नीचे मुंह करके बैठे रहे। तो किसी ने नहीं किया था, तो बाबा ने जगदीश भाई से पूछा, तो जगदीश भाई ने कहा मैंने किया है। और बस वो जो दिन था, जैसे ये करते ही बाबा से उनको एक वरदान मिल गया और बाबा ने उनको कहा कि यू विल बी द चीफ स्पोक्समैन ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। तो ये प्रसंग इतना मार्मिक प्रसंग है और इससे हमें ये सीखने को मिलता है, यदि व्यक्ति संकल्प कर ले कि मुझे करना ही है, तो फिर वो कोई बहाने नहीं देगा, वो किसी भी तरह का कोई भी ब्लेम गेम नहीं खेलेगा। तो सबसे पहली चीज है निवारण की, अगर बात करें हम तो वो है संकल्प, वो है दृढ़ता कि मुझे करना ही है। दूसरी बात है कि परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है, हम इस संसार में एक ही व्यक्ति को बदल सकते हैं और वो मैं खुद हूं। किसी सूफी संत ने बहुत अच्छी चीज लिखी है, वो लिखता है कि जब मैं बहुत छोटा था सोचता था सारे दुनिया को बदल दूंगा, बहुत कोशिशें की, थोड़ा बड़ा हुआ फिर पता चला कि मैं दुनिया को नहीं बदल सकता, मैं एक काम करता हूँ अपने समाज को बदल देता हूँ, जिस समाज में मैंने जन्म लिया। फिर बहुत समय इसमें लगा दिया और थोड़ा बड़ा हुआ, प्राउड हुआ, फिर पता चला इस समाज को बदलना बहुत मुश्किल है, मैं एक काम करता हूँ मैं अपने परिवार को बदल देता हूँ, ये सब मेरे वश है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनको तो मेरी सुननी ही चाहिए क्योंकि मैं तो इनका मालिक हूँ ना। और फिर वो लिखता है अभी बूढ़ा हो गया हूँ, अब पता चला मैं तो परिवार को भी नहीं बदल सकता और अब तो बहुत लेट हो गया है, परंतु मैं एक व्यक्ति को तो जरूर बदल सकता और काश मैंने उसे पहले बदल दिया होता और वो एक व्यक्ति मैं खुद हूँ। तो दूसरी विधि कहो या दूसरी चीज जिससे निवारण हो सके वो है स्व परिवर्तन, मुझे अपने आप को बदलना है। तीसरी बात, जैसे हमने कहा कि बहाने हम क्यों बनाते, क्योंकि हमारे अंदर कोई असमर्थता है इसलिए बहाने बनाते, तो क्यों ना हम अपने आप को खुद ही शिक्षित करे, खुद ही प्रशिक्षण दे, सेल्फ टीचिंग, सेल्फ लर्निंग, वो सारी स्किल्स जो हमें नहीं आती है हम सीखे। कोई हमें कहे कि भाई तुम कंप्यूटर पे टाइप कर दो, तो हम कहेंगे नहीं मैं तो टाइप नहीं कर सकता, मैंने तो कभी किया ही नहीं है काम। अगर हम इस तरह के बहाने देंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। हमें याद है पुष्पा रानी दीदी थे ब्रह्मा कुमारी संस्थान की, अभी तो उन्होंने कुछ समय पहले शरीर छोड़ दिया, वो नागपुर के हेड थे, और एक बार ब्रह्मा बाबा ने उनको एक काम दिया था सिंधी टाइपिंग का। अब उन्होंने तो कभी की नहीं थी सिंधी टाइपिंग, पर बाबा ने कहा है इसीलिए उन्होंने वो करना चालू किया, और बाबा ने 15 दिन का समय दिया था, वो 7 दिन में टाइपिंग सीख गई, क्योंकि दृढ़ता थी। तो हमारे अंदर जो भी स्किल की कमी है हम उसे भरने का कोशिश करें, उसमें परफेक्शन हासिल करें। वो डांस भी हो सकता है, वो म्यूजिक भी हो सकता है, वो भाषण देने की कला भी हो सकती है, वो एंकरिंग हो सकती है, वो किसी प्रोग्राम का आयोजन करना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना हो सकता है, स्टडी स्किल्स हो सकती है, कुछ भी, वो रनिंग हो सकती है, मैराथन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इस संसार में हजारों स्किल्स है, हजारों हुनर है, परंतु हम अपने अंदर वो हुनर लाए और ये क्षमता हमारे अंदर है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, अरुणिमा सिन्हा का एक ऐसा उदाहरण है कि जब वो जा रहे थे लखनऊ से दिल्ली, कुछ लोग आ गए, कुछ उनके चेन वगैरह छीनने की कोशिश की और वो नीचे गिर गई ट्रेन से, दूसरी ट्रेन आई पैर के ऊपर से चली गई, पैर चला गया। कितने मास तक अस्पताल में एडमिट रही, कितने लोग आते थे उदास करते थे, निराश करते थे, और अचानक उनको कैसी प्रेरणा आई कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है, और उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर लिया, बाद में किताब भी लिखी और बहुत सारे कारनामे कर दिखाए, फर्स्ट पैरालाइज्ड लेडी टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जब हम संकल्प कर लेते हैं कि मुझे करना है तो हम करके दिखाते हैं। तो अपने अंदर वो सारे हुनर हमको लाना है। उसके बाद में है बोर्डम, हमने एक कारण बताया था बोर्डम, अंग्रेजी में कहते हैं कि न्यू कम्फर्ट जोन डाउनलोड करने हैं। हर व्यक्ति अपने कम्फर्ट जोन में जीता है, वो उससे बाहर निकलने नहीं चाहता है, पर हमारी वास्तविक तरक्की तब होती है जब अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर निकलते हैं। तो डाउनलोड न्यू कंफर्ट जोन, अनुकूल परिस्थिति में कोई भी काम करता है पर प्रतिकूल परिस्थिति में काम करके दिखाना, इसमें महानता है कि जो हमने कभी किया ही नहीं है उसको चैलेंज के रूप में ले लेना कि हाँ मुझे करना है, आज तक कभी किया नहीं करो, उसको ले लो और फिर सीखो, तो अपने आप मदद आती जाएगी। कहा जाता है जब व्यक्ति संकल्प कर लेता है, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सारी कायनात षड्यंत्र करेगी वो संकल्प साकार करने के लिए। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक यूअर थॉट कम ट्रू, टू मेक यूअर ड्रीम कम ट्रू। तो इसलिए क्रिएटिविटी को लाना है, नई नई चीजें करके देखनी है। एक पश्चिम जगत का विचारक है, उसने कहा लिव डेंजरसली, अर्थात जोखिम भरी जीवन जियो, जो चीजें की नहीं है वो करो, जो करते हो जो आता है वो तो सभी करते हैं, पर नई नई चीजें करनी। तो इससे हमारे अंदर जो बहानेबाजी का जो संस्कार है वो चला जाएगा, खत्म हो जाएगा वो। उसके बाद में समय की बात आई, तो समय को ये समझना, हमेशा समय हमारी रचना है, हम रचता है, हम समय से आगे जाएंगे, समय हमारे आगे नहीं जाएगा, और समय को के ऊपर हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जो करना है अभी करना है, काल करे सो, आज करे सो अब के अभी करना है। तो समय, फिर होता है शरीर, शरीर की बातें, हम अपने शरीर के कारण देते हैं, तो शरीर के हम मालिक हैं, हम अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हैं। हमें याद है स्वामी विवेकानंद की एक बात, जब वो विदेश में थे और उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद, बुखार था, तो दूसरे सन्यासी ने जो गुरु मित्र थे उनके, उन्होंने उनको बताया कि वो इस समय बीमार है, तो स्वामी जी ने उधर से लिखा, क्या वो बीमार है, उनको कहो ध्यान में बैठे और कहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, आत्मा शरीर से भी ज्यादा शक्तिशाली है, ऐसी बात उन्होंने कही थी कहने को। तो हम अपने छोटे मोटे शरीर के बहाने अगर देते रहे मेरा ऐसा है मेरा वैसा है, तो शरीर तो और बीमार होते जाएगा। हम ये सोचे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोगी हूँ, और जो संकल्प कर लो अपने आप शरीर उसको साकार करेगा। शरीर में अगर हम ये सोचते रहे मैं बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो क्षमता नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जितने खेल जगत में लोग देखो या संगीत के जगत में, ऐसे ऐसे लोग जो दिव्यांग थे उन्होंने भी ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए, उन्होंने तो कभी शरीर का आधार नहीं लिया, कहा बहाने नहीं बनाए। तो अपने ही शरीर के मालिक बन जाना, कर्मेंद्रिय जीत बनने का अभ्यास करना, अपने आप को कुछ काम दे देना कि ये मुझे करना है, बस करना है, कोई बहाना नहीं। और एक बात जो मुझे और एक याद आ रही है, विदेश के एक लेखक है मार्क ट्वेन, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम एक बार अपने सारे दोस्त घूमने गए थे, बहुत थक गए थे, शाम हो गई थी, एक्सकर्शन, और एक बहुत बड़ी ऊंची दीवार आ गई। अब दीवार के उस पर कूद कर छलांग लगाकर जाना था। हमको इतना कंडाला आ गया कि हमने कहा हम नहीं जाएंगे। सब लोग बैठ गए, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। तो मार्क ट्वेन ने एक युक्ति की। उसने क्या किया कि सबको कहा अपनी अपनी टोपियां दे दो। सबने अपनी अपनी टोपियां दी, उन्होंने टोपी दीवार के उस पार फेंक दी। अब तो जाना ही था। तो कभी कभी अपने ऊपर जबरदस्ती भी करनी होती है। कभी कभी कुछ ऐसे संकल्प देना कि ये तुमको करना ही है, बस अपने आप को टाइम लिमिट दे देना कि ये दो दिन में तुमको करना है। जैसे कि बॉस ने आपको कोई काम दिया, आप हर बार कोई ना कोई बहाना बनाते हो कि नहीं 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 ऐसा हुआ वैसा हुआ ये हुआ वो हुआ, बहाने, मेहमान आ गए, ये हुआ वो हो गया, वो बीमार पड़ गया, फला हुआ डला हुआ। हम अपने आप को टारगेट दे दे कि दो दिन में मुझे करके दिखाना है बस। जब माइंड को टारगेट दिया जाता है तो माइंड काम करने लगता है।
एक सवाल ये है सर कि हम टारगेट देते हैं, जैसे किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, आरएएस बनना है, वो तैयारी भी करता है उसी हिसाब से, लेकिन एज लिमिट चली जाती है या फिर कांटे की टक्कर होती है 19-20 का फर्क में, वो नहीं बन पाता है, लाइफ में फिर डिप्रेशन आ जाता है, तो कैसे एक्सेप्ट करें, हैंडल करें या नियति को दोष दे के?
तो देखो, ऐसी बात है जो आपने बात कही, सही कही। कहते हैं कि ट्राई योर बेस्ट, ठीक है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड टेक व्हाट कम्स। आप अपनी पूरी कोशिश करो, पूरी कोशिश, जी जान लगा दो, एड़ी चोट का जोर लगा दो, परंतु साथ में वर्स्ट के लिए भी तैयार रहो कि जो हमने किया है उसकी भी तैयारी चाहिए, और लास्ट में जो भी आ जाए उसको फिर स्वीकार करना। परंतु हम ये बात शुरुआत में नहीं कह सकते, ये लास्ट की बात है। जो गीता में भी कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि कर्म के फल की तुम्हें कामना नहीं करनी है, वो तो बात की बात है। चलो हमें मिला नहीं मिला वो दूसरी बात है। दूसरी बात इसमें एक है कि आप जो उदाहरण दिया, आपने कोई एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद हम पास हो जाए ये एक दूसरी बात है, परंतु हम तो ये कहेंगे ये पढ़ाई की जो यात्रा है वो ही परिणाम भी है। उसी में तो कितनी खुशी है, उसमें भी तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है। चाहे हम पास हो न पास हो वो दूसरी बात है, चाहे हमें आईएएस में सिलेक्शन हो जाए न सिलेक्शन हो जाए, पर ये जो यात्रा है प्रिपरेशन की, ये बहुत अच्छी यात्रा है। ये यात्रा हमारे लिए बोझ न बन जाए, ये यात्रा ही हमारे लिए एक जैसे मनोरंजन का सफर बन जाए तो कितना अच्छा है। और दूसरी बात रही एज लिमिट की, तो उसकी तो देखो ऐसी बात है कि आपको पहले से ही अच्छे से प्लानिंग करनी है कि उसके बारे में पूरी जानकारी हमको हो कि इतने समय में हमको प्लान करना है, इतनी मेरी एज है, इस एज लिमिट के अंदर अगर वो एग्जाम करनी है तो इसकी तो लॉन्ग टर्म पहले से प्लानिंग चाहिए। ऐसे नहीं कि एज लिमिट हो गई है और फिर आप सोच रहे हो मैं कैसे करूं क्या करूं। और दूसरी बात, जीवन में केवल एक ही थोड़ी ना चीज है, हजारों चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। एक में असफल हुए दूसरे में, तीसरा, चौथा, ऑप्शंस हमेशा रहना चाहिए हमारे पास। एक ले लिया उसके लिए जी जान से लग जाना है, परंतु हमेशा एक ऑप्शन बी भी रखना है। और दूसरी एक बात, प्रैक्टिस, जितनी हमारी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना हमें बहाने बनाने नहीं पड़ेंगे। अभी हमारी प्रैक्टिस बहुत कम है तो हम प्रैक्टिस करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, एक दिन परफेक्शन हमारे पास आ ही जाएगा।
सर, जैसे हम देखते हैं कि हम ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और मेरे साथ जो स्टाफ है उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया और जो मैंने किया मुझे पता है और बाकी लोगों को पता है कि मैंने अच्छा किया, लेकिन बॉस अप्रिशिएट नहीं कर रहा है और हमने अपने टारगेट की और पूरा ध्यान दिया और हमें अपने सिचुएशंस भी मालूम है, सब कुछ मालूम है, लेकिन हर बार अगर हमें ताना सुनने को मिले तो उस सिचुएशन में कैसे हम अपने आप को स्टेबल रखें?
सबसे पहली बात तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हमारे मन में थोड़ी सी निगेटिविटी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक ऑफिस है जहां पर दो दोस्त हैं, साथ में पढ़ाई की, साथ में ग्रेजुएशन किया और साथ में ही उस कंपनी में जॉब मिला उनको एज अ सेल्समैन। 6 महीने दोनों ने काम किया, 6 महीने के बाद एक को प्रमोशन मिला, एक को नहीं मिला। तो जिसको नहीं मिला वो तो सोचने लगा ऐसा क्यों, हम दोनों तो साथ में ज्वाइन किया और हम दोनों साथ में साथ काम करते हैं और फिर भी उसको ऐसा क्यों और मुझे ऐसा क्यों। तो वो सीधा बॉस के केबिन में गया और कहा कि दिस इज पार्शियलिटी, ये तो पक्षपात है, या आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो बॉस ने कहा चलो ठीक है, मैं एक तुमको काम देता हूँ, तुम एक काम करो, पास वाली जो मार्केट है वहां जाओ, वहां पर एप्पल सेब का क्या भाव है, सेब कैसे है वो पता करके आओ। तो वो जाता है और पता करके आता है कि सेफ है और फिर आ जाता है। बॉस पूछते हैं कैसे थे एप्पल, तो वो बोलते हैं हाँ एप्पल है वहां पर। वो बोलते क्या किलो थे, वो कहते हैं वो पूछा नहीं अभी वापस पूछ के आता हूँ। तो वो वापस जाता है पूछ के आता है। बॉस कहते ठीक है, दूसरे को बुलाते हैं जिसको प्रमोशन दिया था कि जाओ जरा देख के आना एप्पल है या नहीं है। तो वो आता है थोड़ी देर में और ये जो पहला साथी है वो भी वही है। तो बॉस पूछते बताओ, तो ये जो दूसरा है जिसको प्रमोशन मिला था वो कहता है कि वहां पर उसके पास जो एप्पल है वो 30 रुपए किलो है और उसके पास जो स्टॉक है एप्पल का वो 500 का स्टॉक है और जो डिस्प्ले किए हुए है वो 100 है और वो जो एप्पल है एकदम बेस्ट क्वालिटी के है और वो जो एप्पल है वो साउथ से मंगाए हुए है। तो बॉस पहले एम्प्लॉय की तरफ देखता है, तब उसे पता चलता है कि जरूर कुछ ना कुछ तो है, शायद मुझ में ही कोई कमी थी। आपके प्रश्न की तरफ आते हैं, आपने पूछा था कि इस तरह का पार्शियलिटी होती है और हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो देखो एक बात यहाँ कर्म फिलॉसफी भी समझने जैसी है कि हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारा ही हिसाब किताब है। एक दूसरा, जैसा हम अपने बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, हमारी अपने बारे में थोड़ी ज्यादा ही अच्छा ओपिनियन होती है, परंतु वास्तव में शायद वैसा ना हो। जैसे ये पहला एम्प्लॉय तो यही सोचता था ना कि मेरे साथ पार्शियलिटी हुई है, क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ, पर जब उसे पता चला कि मैंने ये काम देखो दो चक्कर मुझे लगाने पड़े फिर भी मैं जो जान नहीं पाया मेरे साथी ने एक ही बार में सारी जानकारी हासिल कर ली
जी।
तो जरूर दूसरे में कुछ ना कुछ तो होगा ना, कोई ना कोई तो गुण होगा, कुछ ना कुछ ऐसी खूबी होगी। तो यहाँ ये ना समझ कर कि बड़ों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं अपने आप को क्या करूं जिससे और इम्प्रूव करूं, मैं उससे क्या सीखूं जो मेरे साथ साथी है। ईर्ष्या का भाव न रखते हुए, द्वेष का भाव न रखते हुए मैं ये सीखूं कि मुझे इनसे क्या मिल सकता है। और एक दूसरी बात, अरब में कहावत है, वहां का भी कहावत है, जैसे भारत में कहावत, हम कहावतों की बातें कर रहे हैं, तो एक कहावत है, मजाक वाली कहावत है कि कहते हैं जब भगवान ने मनुष्य को रचा और एक एक को खुदा ने धरती पर भेजा तो उसके कान में एक बात कह दी और वो ये बात कह दी कि तुम सबसे महान हो, तुमसे महान कोई दूसरा है ही नहीं। तो इसलिए जब भी धरती पर कोई व्यक्ति आता है तो वो ये सोचता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। ये थोड़ी मजाक वाली कहावत है, पर कहने का भाव ये है कि हम जब भी इस तरह की परिस्थिति का हमारा सामना हो तो हम ये सोचे कि मुझे अपने आप में बदलाव लाना है, परिवर्तन करना है, मुझे दूसरों को से सीखना है, बजाय इसके कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये तो करते ही ऐसा, इनकी तो आदत ही है, इनके तो संस्कार ही ऐसे, इनके स्वभाव ही ऐसे, ये तो लोग ही अच्छे नहीं है, इनको यहां से हटाओ, और या प्रार्थना करते हैं भगवान से, ये न करते हुए, क्योंकि इससे हमारे ही मन में निगेटिविटी क्रिएट हो रही है। और जैसे हम संकल्प सोचेंगे वही संकल्प हमारे बॉस तक पहुंचते। और दूसरा एक उदाहरण दूंगा, एक ऑफिस में एक व्यक्ति था जो काम करता था और वो अपने बॉस की गलतियां निकालता था और क्या कहता था, हमारे बॉस की इंग्लिश ना अच्छी नहीं है, उसको इंग्लिश बोलते ही नहीं आता है, पर बॉस के सामने नहीं, बॉस के पीछे अपने आपस में साथियों के साथ कहता था कि इसको इंग्लिश नहीं आती है ठीक से, ये इसका ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत है, इसको ना बोलना सीखना चाहिए, और बॉस के सामने बहुत अच्छे अदब से बातें करता था। 6 मास के बाद सबकी प्रमोशन होगी, उसकी नहीं हुई, तो वो तो एकदम गुस्से में आ गया, वो गया बॉस के पास और कहा कि सबको प्रमोशन थी मुझे क्यों नहीं। तो बॉस ने कहा वो क्या है, मेरी ना इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं आपका लेटर कैसे लिखूं, इसलिए मैं आपका मैं प्रमोशन कैसे दूं क्योंकि मुझे तो इंग्लिश ही लिखने नहीं आती ना। जब भी किसी की निंदा करते हैं, जब भी हम परचिंतन करते हैं, ये याद रखना है दीवारों को भी कान है, वो परचिंतन वो निंदा उस तक कभी ना कभी कोई ना कोई पहुंचाएगा जरूर। इसके लिए इस तरह की निगेटिविटी में हमको जाना ही नहीं है, हम यही सोचे कि मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है।
थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हुई और आखिरकार हमने यही सीखा कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो आपके अंदर नहीं है उसे आपको जानना है, सीखना है, वो कोशिश जरूर करना है और प्लान भी साथ में लेकर के चलना है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे?
लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि आप ठान ले कोई चीज तो चाहे कुछ भी हो जाए आप कर सकते हो। हिंदी में एक कविता है, मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं खोजा पहला नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मैं उस गहरे मोती का आशिक हूँ जो मिला नहीं उसे पा लेने की धुन मेरी। मैं गोताखोर मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। मुझे गहराई में जाना है, मुझे करना है और मुझे ही करना है, और जब मैं करूंगा तब सफलता मेरे साथ साथ चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम अपने अंदर संकल्प कर ले तो भगवान भी हमारी मदद करता है। कहते हैं अंग्रेजी में कहावत, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने जीवन में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का स्लोगन ले ले। आप सब अपने जीवन में अपने आप की सूक्ष्म चेकिंग करें, गहराई से अपने अंदर स्व परिवर्तन लाए, और उसके बाद फिर आपको कभी आंगन को दोष नहीं देना पड़ेगा। और आपका जो डांस होगा वो ऐसा जबरदस्त डांस होगा कि वो डांस वो नृत्य इतना सुंदर होगा कि प्रकृति भी आपके साथ, ये विश्व, ये सारी दुनिया आपके साथ नाचने लगेगी।
थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि आप बीच बीच हमारे साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं 9414151415 पर, फोन भी इसी नंबर पर कर सकते हैं। फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नमस्ते।
कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। कोशिश करने से मुश्किल आसान होती है, मिलने से क्या बोल तमन्ना कम होती है। Hello।